देखिए इस्लाम में भी एक चीज है और आजकल अंग्रेजी में तो एक लफ्ज बहुत चलता है और वो उसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। कभी ऐसा होता है आपकी जबान से कुछ और कह रहा है मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है। बहुत आजकल ये लफ्ज चलने लगा। आज ही मैं ऑस्ट्रेलिया का अखबार देख रहा था, लिखा था कि रिकी पॉन्टिंग ने अपने आप को फिट करार देकर टीम में शमूलियत इख्तियार की, मगर जिस अंदाज से दो मैचों में वो आउट हुआ मुझको तो पता ही नहीं ये रिकी पॉन्टिंग किसी आदमी का नाम है कि किसी घोड़े का नाम है कि किसी शराब का नाम है कि किसी कबाब का नाम है। अल्फाज जो मैंने पढ़े वो मैं बता रहा हूं, ये भी नहीं पता आदमी है तो कब जख्मी हुआ था तो कब वो सही हुआ। कहा जिस तरह दोनों मैचों में वो आउट हुआ तो अगर कि उसने जबान से कहा मैं फिजिकली फिट हूं लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उसकी कोहनी का जख्म अब तक मौजूद। मुझे बाकी तो कुछ समझ में नहीं आया, बॉडी लैंग्वेज गलत समझ में आया कि हां कभी आदमी जबान से कुछ कहता उसका अंदाज कुछ और होता। हां जहन्नम में डाले खेल तमाशे वाले खिलाड़ियों को, हम आ जाए शरीयत पर। फिका में बहुत संजीदा मसला कि आप किसी के घर में उसकी इजाजत के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। अब आगे मुश्तहदीन एक जुमला लिखते हैं वो ये है कि हां लिखते हैं अगर कोई जबान से कह रहा है कि मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं लेकिन आपको उसके अंदाज से लग रहा यानी बॉडी लैंग्वेज कि ये दिल से राजी नहीं है मजबूर अच्छा बोले। एक आदमी ने नमाज की बात कही है तो कैसे मना करे लेकिन अंदाज से लग रहा है दिल से राजी नहीं तो आपके लिए वहां नमाज हराम चाहे वो जबान से कह रहा बिस्मिल्लाह। और अगर उल्टा है कि आपने कहा भाई मैं यहां नमाज पढ़ लू उसने कहा नहीं मैं इजाजत नहीं देता। बेतकल्लुफ दोस्त बहुत ही ऐसी बातें करते हैं लेकिन आपको पता है कि दिल से राजी है और खाली तंग कर रहा है सता रहा है मजाक कर रहा है आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो अब ये मिसाल उस मसले को वाजे कर रही है कि हमेशा जबान की बात नहीं मानी जाती बॉडी लैंग्वेज ज्यादा जरूरी है। हम जबान से कहते मौला आ जाइए लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज और अंदाज कह रहा मौला खबरदार कभी ना आइएगा हमारे सामने तो नहीं आइएगा हमारे पोतों के जमाने में आइएगा। और मैं इसके लिए अक्सर एक मिसाल देता हूं, मिसाल बिल्कुल सही मगर मिसाल में मेरे एक रिश्तेदार की तौहीन हो जाती है तो ये तो मेरे लिए भी जायज नहीं तो मैं उस रिश्तेदार का रिश्ता बदल देता हूं। मिसाल सुनिए बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि शायद लाहौर में मैंने कभी पढ़ा हो मैं कब 93 से लाहौर आ रहा हूं कितनी मजलिसे हैं कभी जहन में मिक्सअप हो जाती है। वो यह है कि इतना तो आपके इल्म में अब आ गया होगा कि मैं शरण भी कसीर उस सफर की कैटेगरी में आता हूं। मैं अगर कहीं एक दिन के लिए भी जाऊं तो मुझे नमाज पूरी पढ़ना वाजिब। मैं मुसाफिर नहीं हूं, साल में इतना सफर करता हूं 8 महीने 9 महीने 10 महीने 11 महीने कि शरण सफर के अंदर भी मुझे कहा गया आप तो मुसाफिर नहीं रहे रोजा भी रखो नमाज भी पढ़ो। तो उस हवाले से एक बात ये दोनों जुमले मेरे बिल्कुल दोनों मिसालें बिल्कुल ठीक है। पहली मिसाल में तो मुझे कहने में भी कोई कबाहत नहीं जैसे आप हजरात खाजगान हैं कराची में होते खोजे हजरात मेरी ज्यादा मजालिस वही लोग सुनते हैं लाहौर में भी ज्यादातर खाजगान बरादरी ही मुझे सुनती और कौन मुझे सुनता एक आध कोई और ऐसा बदकिस्मत होता होगा नहीं बहरहाल। तो खुलासा यह है कि आए मेरे पास एक मोमिन का मौलाना मेरी बेटी की शादी और मैं आपके पास मशवरा लेने आया हूं। बेटे की शादी और मशवरा या तो मतलब होता है कि इस्तखारा देख दीजिए मैं उस लाइन का आदमी नहीं या तारीखें बता दीजिए वो भी मेरी फील्ड नहीं है क्योंकि ये बहुत अहम मसला है कि तारीख बुरी नहीं होनी चाहिए लोग तो बहुत जंतरिया वंतरिया उठाते हैं और फिर आजकल लाहौर भी बड़ा शहर है वहां भी ये मसला होगा। कराची में एक मसला ये भी कि तारीख अच्छी निकल आई लेकिन अच्छी तारीख को शादी के हॉल खाली नहीं मिलते 6-6 महीने 9-9 महीने 2-2 साल अच्छे हॉल में 4-4 साल की बुकिंग है एडवांस। हम जाते कहते 4 साल के बाद शादी कीजिएगा तो हमारा हॉल मिलेगा। तो अब यही सारी चीजें लोग डिस्कस करने आते हैं मैंने कहा बताइए क्या मसला। कहने लगे कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा एक रिश्ता हो और बस दिल चाहता है कि शादी करूं और इस रिश्ते को हाथ से जाने न दूं। मैंने कहा मुबारक। तो आया इसलिए हूं कि आप अपनी डायरी देखिए कि पूरे साल कौन सी तारीख ऐसी है कि जब आप कराची में होंगे। मैंने कहा आप जाके हॉल का बुकिंग रजिस्टर देखिए या जंतरी देखिए। कहा नहीं इतने एहसानात है आपके मेरे ऊपर, ये ना कहिएगा कि मौलाना मिसाल के नाम से अपना प्रोपेगेंडा कर रहे, उनके जुमले नकल कर रहा हूं। का इतने एहसानात आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे घर की जिंदगी बदल दी, मेरी ये बच्ची जो है शुरू से हमने इसको आपके बताए हुए उसूलों से पाला, बड़ी अच्छी है, और ये बहरहाल छोड़िए बात। खुलासा यह है कि मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी बेटी रुखसत हो और आप वहां ना हो। मैं चाहता हूं कि यह आपकी दुआओं के साए तले रुखसत। मुझे ना हॉल देखना है ना तारीखें देखना, आपकी डायरी में जिस तारीख को आप कराची में खाली हो शादी उसी दिन रखी जाए। मैंने कहा और अगर ना मिला हॉल तो आप घर के अंदर छोटा सा निकाह करके रिसेप्शन वगैरह बाद में कर लें। निकाह के मौके पे आपका वजूद जरूरी है। इस अंदाज से बात कर रहे थे कि अगर मैं उस दिन मसरूफ भी होता तो जरा एडजस्टमेंट करके सफर को मुख्तसर करके तारीख को डिले करके उनके लिए जरूर वक्त निकालता। इतने खुलूस, इतनी मोहब्बत, जबकि मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं। मैंने वो जो कहा ना कि वो खोजे थे, वो इसलिए कि हम लोग उर्दू बोलने वाले, वो गुजराती बोलने वाले। वो जो एक लफ्ज पंजाब में बहुत पूछा जाता, मौलाना आप कहां के? हमने कहा कराची। पीछे कहां के? तो हम मुड़के देखते हैं पीछे, पीछे तो कहीं का होगा नहीं। मौलाना पीछे से मतलब है आपके बुजुर्ग कहां से आए थे? यह पता चला कि पीछे का ये मतलब होता, हम तो कुछ और समझते थे। तो हमने कहा कि जी पीछे हम यूपी के हैं और जो खोजी हजरात हमारे हैं वो पीछे बंबई या गुजरात के। यूपी से गुजरात कितना? 4 घंटे की तो फ्लाइट है। तो कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कोई पस मंजर नहीं, लेकिन बिल्कुल खैर और अजनबी इतनी मोहब्बत के साथ बात कर रहा है कि मैंने वाकान उसके लिए तारीख निकाल ली। 6 मजलिसें पढ़ना थी वहां 5 की, जहां आज से मजलिस शुरू करना थी माजरत करके अगले दिन से शुरू। दूसरी जानब मेरी बहन, बड़ी बहन, उनकी बेटी जवान हुई, उसकी भी शादी होना, वो भी आई मेरे पास। और ये पैगाम देते हुए कि भाई मुबारक हो, तुम्हारी भांजी का बहुत अच्छा रिश्ता आया, लेकिन दावत मुझे दे रही है कार्ड, अजीब जुमले के साथ। अब उन बहन का मसला समझिए, वो बहन कराची के आम माहौल की। अब उनके लिए मसला है कि अगर मुझे न बुलाएं तो शादी में आने वाला हर मेहमान, क्योंकि खानदान की हद तक मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मेरी ही शोहरत, हर एक पूछेगा भाई मौलाना नहीं आए, मौलाना है कि नहीं, क्यों नहीं आए, किसने कितने बजे आएंगे। अब हर रिश्तेदार पूछे, मैं भी खानदान का एक फर्द, क्या क्या जवाब देंगे लोगों। और अगर बुला लें तो बकौल उनके कि शादी का सारा मजा खत्म हो जाएगा, ये आएंगे तो ये यहां भी अपनी तबलीग शुरू कर देंगे। सबसे पहला काम करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करने वाले को उठा के बाहर फेंकेंगे। शरण इजाजत नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला औरतों में जाए। यहां हमारे यहां वीडियो रिकॉर्डर जो है वो औरतों का सबसे बड़ा महरम माना जाता है, उसे इजाजत है कैमरा लेके औरतों में गुस्सा चला जा रहा है, ना कोई रोकता है ना कोई टोकता। वो पहली पाबंदी ये लगाएंगे, हमारे कराची की शादियां मिक्स गैदरिंग, वो आते ही कहेंगे कि पर्दा डालो, जब खैरों के यहां निकाह पढ़ने जाते दरवाजे पे मौलाना रुक जाते हैं कि हम कदम नहीं रखेंगे। ये क्या माहौल है कि औरत मर्द साथ बैठे, पहले इसमें पार्टीशन लगा, और ये बिल्कुल आखिरी वक्त में पता चलता है साहिब खाना को। अब तो कोई दूसरा मौलाना भी अवेलेबल नहीं होता, निकाह इन्हीं से पढ़वाना, मजबूरन 10 गालियां देते हुए पार्टीशन लाके लगाता। तो ये तो इनकी अपनी भांजी की शादी, फिर हमारे यहां शादी भी हमें गाने के बगैर तो शादी होती ही नहीं। शुरू में हदीसे किसा पढ़ी जाती है 5 मिनट की, लेकिन 5 दिन गाने चलते, हदीसे किसा से पहले 2.5 दिन, हदीसे किसा के बाद 2.5 दिन। हम तो जरा बिजनेसमैन है ना, इसको भी राजी रखो उसको भी राजी रखो। हदीसे किसा पढ़ के पंजीतन को खुश करो, गाने गा के शैतान को खुश करो, दोनों ही आ जाए, दोनों ही कभी काम कर सकता। आखिरत में पंजीतन काम आएंगे, दुनिया में तो शैतान ही काम आता है ना, जब इससे ताल्लुकात बिगाड़ो ना उससे, ये आएंगे मौलाना तो आते ही हंगामा जोत देंगे। खानदान वाले मेरे बारे में कहते हैं कि भाई तुम तो ऐसे ही शादी करवाते हो, लगता ही नहीं है कि शादी है, लग रहा है कि किसी के तीजे के अंदर स्वयं के अंदर चनों पे खुल पड़ने के लिए कहे। मैं ऐसी फीकी फीकी शादी, वीडियो ना हो ना महरम साथ में ना बैठे, गाने ना हो तो शादी क्या हो। अब बहन बड़ी परेशान, अगर इनको बुलाया तो सारी शादी का मजा खत्म कर देगी, और इनको नहीं बुलाया तो हर आदमी पूछेगा जरूर तुम्हारा छोटा भाई और खानदान में मशहूर वो कहां, और पता चला कि मैं कराची ही में हूं और उसी महल्ले में रह रहा हूं, सामने तो मेरा घर है उनके। आते जाते लोग देखेंगे आप ये क्या कर रहे हैं, वो बेइज्जती भी नहीं चाहती है और शादी को खराब भी नहीं करना चाहती। तुम आ गई मेरे पास कार्ड लेकर, मेरी बड़ी बहन, बड़ा तो बहरहाल एक सीजन एक तजुर्बेकार आदमी होता है ना, ओल्ड इज गोल्ड। कहा कि भाई ये देखो तुम्हारी भांजी की शादी, बड़ा अच्छा रिश्ता है, तुम्हें भी मुबारक हो, भांजी बेटी की तरह होती है, और ये खुला दिल शादी, दिल बहुत चाहता है तुम आओ, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत मसरूफ हो और दीनी कामों में मसरूफ हो, तुम्हारी तबलीग माशाल्लाह। मैं दिल में हैरान कि हमेशा मेरी तबलीग पर मुझे गाली देने वाली बहन आज ये मेरी तबलीग पर तारीफ क्यों कर रही। भाई कहीं पे कोई दावत आए, कोई तुम्हें बुलाए, कोई मजलिस हो, कोई दस, मेरा ख्याल ना करना, मैं बुरा नहीं मानूंगी, ये मैं सोच रहा कि भांजी की शादी छोड़ के कैसे जाऊं, चले जाना, तुम जहां भी होगे वहां से दुआएं भेजना, हमें तुम्हारी दुआएं चाहिए, आओ ना आओ इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत नेकी का काम तुम कर रहे हो। दुनिया के किसी इलाके से, सहराए गोभी या सहराए अफ्रीका से भी कोई बुलाए तो मना मत करना, मुझे इतनी कोई फिक्र नहीं है कि अपनी खातिर तुम्हारी तबलीग के रास्ते में रुकावट बनूं। 50 दफा तो उन्होंने कहा चले जाना, चले जाना, चले जाना, कोई बुलाए चले जाना, कि अगर मैं खाली भी होता तो उनके घर तो कम से कम नहीं जाते, कार्ड दे रही, बाद में अगर मैं शिकवा करूं तो 50 खानदान वालों के सामने बैठ के कहें झूठ बोल रहा मेरा भाई, मैंने कार्ड दिया, मैंने बुलाया था, लेकिन बुलाया 3 दफा का और 300 दफा का चले जाना, चले जाना, चले जाना, कोई बुलाए कहीं बुला। क्या मैं इतना समझदार नहीं हूं कि ये दावत किस तरह की दी जा रही, वो गैर है, अजनबी है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, हत्ता हम दोनों की जबान भी मुश्तरक नहीं है पाकिस्तान में रहने के बावजूद, उसकी खातिर मैंने अपने प्रोग्राम बदले और उसकी शादी में गया, इतने खुलूस से बुलाया, और ये बहन है, सगी भांजी है, और इस अंदाज से बुलाया कि मैं उस दिन खाली भी बैठा था घर में, इनके यहां नहीं आया। अच्छा असल जो रिश्तेदार मेरे थे जिनका ये वाकया, उनका मैंने रिश्ता नहीं लिया क्योंकि उनकी तौहीन हो, बहन की मिसाल क्यों दी, क्योंकि मेरी कोई सगी बहन ही नहीं है, इसलिए इस हवाले से उनकी तौहीन नहीं होगी, लेकिन वाकया सच्चा है, ऐसे ही बहन जैसे करीबी रिश्तेदार का। मैं कम अकल आदमी, मैं जाहिल आदमी, जब मैं समझ गया कि जबान से बुलावा देना मगर अंदाज ये कह रहा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम आके गड़बड़ करोगे, नहीं चाहिए तुम, तो मैंने आने को तैयार नहीं हुआ। इमाम मासूम तो अकले कुल है, बाबे मदीना तो इल्म है, इमाम मासूम खतीबे मिंबर सलूनी, क्या वो नहीं देखते कि ये बिजनेसमैन जो बुला रहा है आ जाइए, ये नौजवान जो डिस्को में जा रहा है कह रहा है आ जाइए, ये औरत जो बेहिजाब घूम रही है आ जाइए, ये जबान से कह रहे हैं आ जाइए, इनका अमल ये कह रहा है कि मौला अभी ना आइए, अभी हम तैयार नहीं आपके लिए। क्या इमाम ये बात महसूस नहीं करेंगे जो मुझ जैसा जाहिल और कम अकल महसूस कर लेता, यही वजह है कि हम अजल्ला कहते कहते गला सूख जाता, आवाज बैठ जाती है, जबान घिस जाती है, इमाम नहीं आते, क्योंकि हमारा अंदाज ही वो है जो मेरी बहन का अंदाज है कि 3 बार कहते भाई आ जाना, 500 मरतबा कहते नहीं आना। मौला हमारे दादा भी आपको बुला रहे थे, आपने उनकी बात सुनी नहीं आज, हमारे बाप ने भी जिंदगी भर आपको बुलाया आप नहीं आज, तो मौला आपका क्या बिगड़ेगा अगर हमारे सामने भी ना आए, ये हमारी मिस गैदरिंग हमसे नहीं छूट रही, ये बेहिजाबी हमसे नहीं छूट रही, ये गाने बजाने का शौक हमसे नहीं छूट रहा, ये नमाजें हमसे नहीं पढ़ी जा रही, ये बिजनेस पार्टनर का हक हमको नहीं दिया जा रहा, ये दुकान पे बैठ के हराम और हलाल का ख्याल हमसे नहीं रखा जा रहा, और वो इमाम आएगा सुन, आईना तालिब ने दमिल मकसूले में करबला, असल में वो करबला का इंतकाम लेने आएगा, लेकिन बकरी ने बकरी को सींग मारा तो उसका बदला भी बोलेगा। तो हम अगर जालिमों की छोटी कैटेगरी में आए तब भी इमाम आके हमसे भी बदला लेंगे, यही वजह है कि चूंकि ये आवाज हमारे दिल से नहीं निकल रही, खाली जबान से निकल रही। भाई मैं जर्नलाइज नहीं कर रहा हूं, अक्सरियत की बात कर रहा हूं। है कोई ऐसा जिसने अजल अल्लाह कह के अपने घर से म्यूजिक निकाल दिए, जिसने अल अजल कह के अपने घर की खवातीन को हिजाब वाला बनाया, अजल अल्लाह को समझा हो कि इसका मतलब क्या है, बुला रहा हूं।
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى